बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान हमारी सुना रहे थे कि दार जदीद ने हज़रत शेख क़ुद्दुसी रूह ने पहला रमज़ान गुजारा, ईद के बाद कच्चे घर मुंतकिल हुए और हज़रत ने मौलाना नसीरुद्दीन साहब से मुतआरफ़ कराया कि अब्दुर्रहीम का भाई यूसुफ है, यहाँ ठहरेगा। फिर ईशा के बाद की खुसूसी मजलिस में पहली डांट पड़ी कि वक्त पर नहीं पहुँचे, जैसे मिस्र में बाद दोहर के माना हम नहीं समझ पाए और जोहर की नमाज़ पढ़कर पहुँच लिए, तो इसी तरह यहाँ भी बादल ईशा का मतलब नहीं समझ पाए और डांट पड़ी। मगर जब हज़रत डांट रहे थे और काब कौसैन की दूरी की मसाफत से ये कैसे मैं बर्दाश्त कर गया, बल्कि मेरी हंसी छूट गई, तो हज़रत भी इस पर मुस्कुरा दिए। तो उस तो गया ये दाखला हज़रत की खिदमत में बारियाबी और हज़रत के खुदाम में हज़रत ने शामिल फरमा लिया, तो ये एक दाखला हुआ। और दूसरा मदरसे का दाखला लेना था तो उसके लिए फार्म पुर किया, तो हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब ने पूछा नाम, फिर आगे दूसरा सवाल वलदियत, अब समझते ही नहीं ये मेरे। मैंने अर्ज़ किया कि हम गुजरातियों को उर्दू से क्या ताल्लुक़ कि जो इस सवाल का मतलब नहीं समझे वलदियत। अब मैं चुप, मैं हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब को देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं कि ये जवाब क्यों नहीं देते। तब उनको फिर अपने सवाल के कलिमात बदलने पड़े कि आपके वालिद का नाम क्या है, तब मैंने जवाब दिया। फिर पूछा दादा का नाम, तो अल्लाह की शान के कभी वालिद साहब नवर अल्लाह मरकदहु तो मगलूब अलहाल मजजूब थे, और उस वक्त तक तो इतनी वालिद साहब से मुलाकातें हुई थी कि जो उंगलियों में गिनकर मैं बता सकता था। हालांकि मैं मिश्कात में दाखला ले रहा हूं और उस वक्त तक इतनी मुलाकातें जिसको गिनकर बताया जा सकता है कि वालिद साहब के पास फलां साल फलां महीने में मुलाकात हुई थी, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, इस तरह गिनकर बता सकते थे। और हमारे ननियाल वालों को तो इसका इल्म यकीनन नहीं होगा कि हमारे दादा का नाम क्या था, और ददियान में क़याम रहा नहीं, वालिद साहब के रिश्तेदारों के साथ भी उस वक्त तक कोई चंद एक रात क़याम के सिवा ज़्यादा रहना नहीं हुआ था कि जिससे पता चले कि कभी कान में पड़ा हो कि दादा का नाम ये था। लेकिन कैसे अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, कैसे हुआ कि मैंने कहा कि कासिम, फिर मैंने भाईजान को आकर बताया तो भाईजान ने अपना वाकया सुनाया कि जब मैंने रांधेर में दाखला लिया तो वहाँ मेरे साथ भी बिल्कुल हूबहू यही पेश आया और अल्लाह ने मदद फरमाई और कहते हैं मैंने सही जवाब दिया। इस पर इस लतीफ़े को हम दोनों भाइयों के एक ही जैसे लतीफ़े को बार बार कभी हम दोहराते याद करते हैं। तो इस तरह जो बेचारे यतीम होते हैं, आजकल की एक मुनज़्ज़म दुनिया में जिसमें तमाम रिकॉर्ड बराबर रहना चाहिए, क्या क्या उन्हें तकालीफ और मसाइब और मुश्किलात पेश आती होंगी। अल्लाह ताला उन तमाम का रब है, मुरब्बी है, वो हय्यु क़य्यूम है, اللہ عز و جل نے جس طرح بالکل بر وقت بلا کسی واسطے کے بالکل صحیح جواب میں نے بھی دیا بھائی نے بھی دیا، تو یہ اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ تو وہ فارم پر ہو گیا اور اس کے بعد مجھے امتحان کے لیے مولانا سید ذوالفقار علی صاحب کا اسم گرامی بتایا گیا۔ تو جب میں نے آ کر رفقا جو وہاں پہلے رہ چکے تھے ان کے سامنے ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ آپ کا امتحان لیں گے، وہ تو بہت سخت امتحان لیتے ہیں۔ لیکن اس سے مجھے کوئی زیادہ تشویش نہیں ہوئی، میں نے سوچا کہ جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں اگر انہی کتابوں سے ہمارا امتحان لیں تب تو انشاءاللہ کامیابی کی امید ہے۔ چنانچہ میں دار جدید پہنچا اور امتحان چل رہے تھے تو مجھ سے پہلے بھی اور میرے بعد بھی کچھ طلبہ منتظر تھے، اور وہ دارالطلبہ قدیم کے گیٹ میں آپ داخل ہوں تو دارالطلبہ قدیم کی داہنی جانب حضرت ناظم صاحب مولانا اسد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا حجرہ تھا، اور الٹے ہاتھ پر حضرت مولانا سید ذوالفقار علی صاحب کا، اور حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی بھی ایسی زبردست کڑی تھی کہ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ متعدد واقعات بیان فرماتے ہیں کہ جس میں بالیقین کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ناظم صاحب کو کشف کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ حضرت نے اسی وقت بلایا، مولانا یونس صاحب کو بلاؤ، اور حضرت نے شفقت فرمائی۔ تو یہ تو روحانی نگرانی حضرت ناظم صاحب فرماتے تھے، اور ظاہری طور پر نگران حضرت مولانا سید ذوالفقار علی صاحب تھے۔ دونوں کی نگرانی بڑی کڑی نگرانی، کہ جب ہمارا دورے کا سال تھا تو سبق شروع ہونے سے پہلے تحابی کے سبق میں رجسٹر لیا جاتا تھا، حاضری لی جاتی تھی، نام پکارے جاتے تھے، اور تو ہم نے وہاں پہلی دفعہ دیکھا کہ حضرت ناظم صاحب کے یہاں کہ کوئی طالب علم لبیک نہیں کہہ سکتا تھا، حاضر یا حاضر جناب، دوسرے اساتذہ کے یہاں کوئی خاص تقسیم نہیں تھی لبیک یا کوئی جواب دے دو حاضری کہ میں موجود ہوں، لیکن حضرت ناظم صاحب کے یہاں اگر کسی نے لبیک کہا تو حضرت ناظم صاحب فرماتے کہ لبیک اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کام کے لیے پکارا جا رہا ہو۔ ہم نے کسی کام کے لیے ضرورت کے لیے آپ کو نہیں پکارا کہ آپ نے لبیک کہہ دیا، صرف آپ موجود ہو یا نہیں یہ ہمیں معلوم کرنا تھا، اس لیے حضرت کے یہاں حاضر یا حاضر جناب۔ تو جب ایک نام پکارا گیا یوسف میرٹھی تو حضرت نے گردن اوپر اٹھائی اور تمام طلباء کو دیکھ رہے ہیں اور جیسے کسی کی تلاش ہو، تو انہوں نے جواب تو دے دیا مولانا یوسف میرٹھی صاحب نے کہ حاضر جناب، ہلکی سی آواز میں، حضرت نے بھی سن لی، لیکن حضرت چاروں طرف گردن اٹھا کر کے تلاش کر رہے ہیں کہ کدھر سے آواز آئی، پھر فرمایا یہ حضرت یوسف میرٹھی کون شخصیت ہیں، میں ذرا ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ मौलाना यूसुफ मीरठी मुश्किल से खड़े हुए और हज़रत नाजिम साहब ने फरमाया कि मैंने आपको उठने की तकलीफ़ इसलिए दी कि मुझे आपकी ज़ियारत करनी थी। जैसे फरमाया गया अभी करीब में हिंदो पाक की 1965 की जंग हुई, तो जंग के बाद यूरोप और मगरबी मुल्कों से बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान पहुँचे। उनका एक ही मकसद था कि ये जनरल अय्यूब ख़ान कौन हैं, उनकी ज़ियारत करनी है, कि जिन्होंने बग़ैर पेशगी किसी तैयारी के अपने करीबी मुल्क हिंदुस्तान की तरफ से आने वाली 600 टैंकों का मुकाबला किया और अपने मुल्क को बचा लिया। तो जैसे अय्यूब ख़ान की ज़ियारत के लिए मग़रिबी मुल्कों से सफ़र करके लोग पहुँचे, तो इसी तरह मुझे ये यूसुफ मीरठी कौन है उनकी ज़ियारत का मैं मुश्ताक था कि ये कौन शख्सियत हैं कि जो मदरसे के कवानीन का दिल खोल कर मुकाबला कर रही है। बेचारे यूसुफ मीरठी गरीब रात को कहीं चाय पीने के लिए दुकान पर पहुँचे होंगे और चंद मिनट की ताखीर हो गई होगी, इधर गेट बंद हो गया और दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी होगी, तो वह दस्तक की आवाज़ वहाँ पहुँच गई या कश से हज़रत को मालूम हो गया रात को कुछ हुआ है। वरना दरबान वगैरह तो ऐसी चीज छोटी मोटी चीज़ों की शिकायत नहीं किया करते थे। क्या हमारे अकाबिर थे, क्या उनकी निगरानी थी, क्या उनके अवसाफ थे, हम तो सब खाली खोली हो गए। कहाँ की रूहानियत और कहाँ के मुकाशफे और मुजाहदे, हमसे तो फ़राइज़ अदा नहीं होते, हराम हलाल की तमीज़ नहीं रही। अल्लाह ताला हमारे मदारिस पर रहम फरमाए, मदरसे वालों पर रहम फरमाए, उलमा और अहले इल्म के हाल पर रहम फरमाए, दीनी मराकिज़ पर रहम फरमाए, दीनी मराकिज़ वालों पर रहम फरमाए। क्या हमारे अकाबिर थे और हम कहाँ पहुँच गए। तरक्की माकूस देखते हुए दिल दहल जाता है कि और ये तरक्की माकूस कहाँ तक पहुँचाएगी और कहाँ जाकर फेंकेगी हमें। फ़इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये हज़रत मौलाना सैयद ज़ुल्फ़िकार अली साहब का हुजरा गेट से दाखिल होते वक्त बाईं तरफ होता था, तो वहाँ मैं कुछ 11 बजे के करीब इंतज़ार में बैठा कि मेरी बारी आए और मैं इम्तिहान के लिए पहुँचूँ। चुनाचे मैं जब हाज़िर हुआ तो नाम पूछा, वतन पूछा, उसके बाद फिर तालीम पूछी, कहाँ तक तालीम है, क्या पढ़ा। तो मैंने बताया कि गुज़िश्ता साल में हिदाया अवलैन और मकामात और शरह अकाइद ये नाम गिनवाए, तो फरमाने लगे कि मंतिक में क्या पढ़ा। तो मंतिक में मुईनुल मंतिक, मीरकात, शरह तहज़ीब। तो फरमाने लगे कि आपने नसुल्लम पढ़ी, नमीबजी पढ़ी और ये शरह अकाइद कैसे पढ़ ली। तो मेरा माथा ठनका कि जो साथी अभी मुझे कल बता रहे थे कि सख्त इम्तिहान लेते हैं, तो वाकई ऐसा ही कुछ होगा। चुनाचे फिर उन्होंने पहले मकामात में से चंद जगह से पढ़ाया, फिर उसके बाद हिदाया में से कहीं से कुछ पढ़ाया होगा, और उसके बाद जब शरह अकायद में चंद जगह पढ़ा कर फरमाने लगे कि तो आपके उस्ताद कौन थे, तो मैंने नाम लिए तो फरमाने लगे ये तो कमाल दर्जे के आपके उस्ताद हैं कि ये जो तरतीब में जो किताबें आती हैं उसे पढ़े बगैर कैसे कमाल दर्जे के मुदर्रिस हैं कि जिन्होंने शरह अकायद आपको इस तरह समझा कर पढ़ा दी और पिला दी। फौरन ही उन्होंने किसी खादिम से फरमाया जाओ भाई दूध पापा ले आओ, तो मेरे लिए बतौर ख़ास उन्होंने बड़े बहुत बड़े प्याले में भरकर दूध पापा मुझे वहाँ खिलाया। तो मुझे फिर ख़्याल हुआ कि नहीं ये तो गलत इत्तेहाम है कि सख्त गिर हैं, माशाअल्लाह सैयदज़ादे और कैसा उनका हुस्ने खुल्क और कितना प्यारा इम्तिहान। चुनांचे फिर मिश्कात जलालेन और हिदाया सालिस और हिदाया राबे चार किताबों में दाखला मैंने लिया, लेकिन हिदाया राबे होती थी हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, और हज़रत की आवाज़ करीब वाला भी हज़रत के होंठ से अपना कान मिलाकर सुन सकता था, तो वो मुकब्बिर उस्सौत बन कर गए। फिर जो हज़रत फरमाते उसे जमात के सामने बुलंद आवाज़ से नकल करता, और इस तरह सबक हो रहा था। दो तीन दिन सबक में मैंने शिरकत की, उसके बाद मैंने चौथी जिल्द को अच्छी तरह बग़ौर मुताला करके मैंने सोचा कि ये जिल्द हिदाया वलेन की चारों जिल्दों के मुकाबले में सबसे सहल तरीन है, तो अगर मैं इसको हज़्म कर दूं और ये घंटा हज़रत शेख क़ुद्दस सिर्रहू सुबह के आखिरी घंटे में ये हिदाया राबे का घंटा था, तो सोचा कि ये घंटा हिदाया राबे के बजाय मैं हज़रत शेख क़ुद्दस सिर्रहू की खिदमत में कुतुब खाने में हज़रत जब तसनीफ़ फरमाते हैं तो वहाँ मैं अपने मामूलात में या कुतुब बीने में सर्फ करूँगा। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह दाखला हो गया और हज़रत की खिदमत में हम आने जाने लगे। पहला जुमा था कि हज़रत को गुस्ल कराने में शरीक हुए, गुस्ल से फारिग होकर हज़रत हकीम अयूब साहब वाली मस्जिद में जुमे की नमाज अदा फरमाते थे। तो जब हज़रत को कपड़े पहनाए जाने लगे तो मैंने हमेशा हज़रत को अपने दाहिने हाथ पर उठाया कि हज़रत का बायां हाथ मेरे दाहिने हाथ में था और दाहिनी तरफ हज़रत का दाहिना हाथ हमेशा कोई दूसरा खादिम संभालता, अक्सर व बेशतर मैं इसी एक तरफ से हज़रत को उठाया करता था। तो मैं अपने दाहिने हाथ पर हज़रत का बायां हाथ पकड़े हुए था और कुर्ता हज़रत को पहनाने के बाद बैठे बैठे हज़रत चारपाई पर कुर्ता पहन रहे थे, तो हज़रत ने फरमाया कि हाफिज़ जी मुझे खड़ा करो। तो अभी चूँकि जाने की और जूते पहनने की मुकम्मल तैयारी नहीं थी, तो अभी सिद्दीक़ साहब जूते लाने लगे, हज़रत ने फरमाया कि नहीं जूते रहने दे मुझे खड़ा कर। चुनाचे एक तरफ़ से हाफिज़ सिद्दीक़ ने पकड़ा है, दूसरी तरफ़ से मैंने, और हज़रत खड़े हो गए। हज़रत ने फरमाया कि इधर आकर देख हाँ, हज़रत ने अभी सिर्फ कुर्ता नहीं पहना था, हज़रत ने सिर्फ कमरी पहनी थी। कुर्ता पहनने से पहले हज़रत ने फरमाया कि हाफिज़ जी, मुझे उठा। हाफिज़ सिद्दीक़ साहब को ख़्याल हुआ कि हज़रत अभी कुर्ता बाकी है, फरमाया अभी मुझे उठा। तो हज़रत को जब हमने खड़ा किया तो हज़रत ने हाफिज़ सिद्दीक़ साहब से फरमाया कि देख, मेरी कमरी लंबी है या इसका कुर्ता लंबा है। तो हाफिज़ जी, हाफिज़ सिद्दीक़ साहब एक ख़ास अंदाज़ में हंसते थे, तो हंसते हुए फरमाने लगे कि आपकी कमरी लंबी है। तो जैसे ही इस प्यार से भरपूर इसलाह का तरीक़ा, कितना प्यारा, कि फौरन जुमे की नमाज़ से फारिग होकर मैंने दर्जी को तलाश किया और मैंने मेरे दो कुर्ते उसे दिए और मैंने कहा कि इसका आधा कपड़ा काट कर नीचे वाला दूसरे कुर्ते पर लगा दो। तो जब मैं वो पहन कर आया तो हज़रत बेपनाह मसर्रत और ख़ुशी का हज़रत ने इजहार फरमाया और फौरन कपड़ा मंगवाया, कुर्ते सिलवा कर दिए। अल्लाह ताला हज़रत को हमारी तरफ से दारेन में बेहद जज़ाए खैर अता फरमाए और जो जो हमसे हज़रत को तकलीफ़ें पहुँची अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। एक एक अदा हज़रत की याद आती है, एक एक चीज़ देखकर। इसलिए मैं तलबा से हमेशा कहा करता हूँ कि हज़रत के यहाँ की दास्तानें ऐसी हैं कि किसी एक चीज़ का लिबास में नाम लो, क्या मोज़ा, क्या दस्ताने, क्या टोपी, क्या इमामा, क्या चादर, क्या लिहाफ, खाने पीने की चीज़ों में क्या अचार, क्या पापड़, क्या सालन, क्या चावल, क्या रोटी। तो मैंने कहा किसी चीज़ का इनमें से नाम लो, मैं कोई एक कहानी, कोई किस्सा हजरत शेख का और कच्चे घर का सुना सकता हूँ। अल्लाह करे कि हजरत शेख कुद्दुस सिर्रहू हमसे खुश हों। जब इस जहान से जाने का वक्त आए तो तकलीफ़ फरमाए हमारे लिए और उनके जिलों में उनकी आड़ लेकर के हम उस जहान में किसी तरह अमन व अमान से दाखिल हो पाए।
गुज़िश्ता रात मोतकफीन से मैंने अर्ज़ किया था कि हदीस पाक में दुआ आई है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़क़हर वल्लज़ी बतना फ़ख़बर वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मलक फ़क़दर वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युहयी अल्मौता वहुवा अला कुल्ल शयइन क़दीर। तो जब बिस्तर पर जाएं, दिन में जाएं, रात को जाएं, तो एक दफ़े पढ़ लें। तो इसकी फजीलत में आता है कि जब जब भी मौत आएगी तो नामे आमाल गुनाहों से साफ होगा। और इसी तरह मोतकफीन के साथ हमने वतरों के बाद 100 दफ़े नमाज में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी है, अल्लाहुम्मा अग़फिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफूर, वो भी हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। अल्लाह करे कि हम अब सारी उम्र के लिए दिन में एक दफ़े पढ़ें, रात में एक दफ़े पढ़ें। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, क्योंकि न जाने कब इस जहान से हमारा जाने का वक्त आ जाए और हम मालिक के हुजूर हाजिरी के काबिल हो सकें। दुनिया के बारे में कहा गया है, कुल दुनिया बिरतिहाली व इंतकाली। तो इसी तरह मेरे भी सफ़र की तवक्कु है, तो अगर सफ़र हुआ तो कोशिश करता रहूँगा सफ़र में से कुछ न कुछ मारूदात आपकी खिदमत में पहुँचती रहे, इसकी कोशिश रहेगी। जो कोताही इसमें हो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, आप हज़रात से भी माफ़ी की दरख्वास्त है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़। علیہ سیدنا مولانا محمد والی وصحبہ اجمعین.